हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वांगमय स्वरूप है, तेनेय वांगमय मूर्ति, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे भगवत स्वरूप भागवत कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भक्तों, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह था कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। जब तक भगवान श्री कृष्ण यहां पर थे, धर्म की संस्थापना की, धर्म का पालन किए, परंतु भगवान के जाने के बाद धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। कृष्ण के जाने के बाद इस संसार में धर्म किसकी शरण में है, तब इसका उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जाने के बाद धर्म भागवत के शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम दिनों में जब इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में वापस जा रहे थे, उस समय उद्धव जी को भागवत का ज्ञान प्रदान किए। उद्धव जी कृष्ण के परम मित्र थे। कृष्ण के विरह में रोने लगे, प्रभु आप चले जाओगे, मेरा क्या होगा, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के सामने, उद्धव जी के देखते देखते साक्षात कृष्ण श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो गए। कृष्ण ही भागवत का रूप धारण कर लिए। भक्तों, भागवत के यह श्लोक कोई साधारण शब्द नहीं है। भागवत के ये श्लोक साक्षात ब्रह्म, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस श्लोक के रूप में कन्वर्ट हो गए, रूपांतर हो गए। ये श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म है, जिसके प्रत्येक शब्दों में भगवान को भरा गया है, भगवान है। भगवान के पास बैठकर भगवान के साथ रहने से जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना ही आनंद श्रीमद् भागवत के साथ रहने से, श्रीमद् भागवत के बाजू में बैठने से प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, There is no difference between भागवत and भगवान कृष्ण, कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं। तब कलयुग की बुद्धि, हम इस संसार में सब चीज हमारी बुद्धि से तौलते हैं, नापते हैं। जब दो चीज हमारे सामने आती हैं, तब चुनाव होता है, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। यदि मन में प्रश्न हो वैसे भागवत और भगवान दोनों समान है, परंतु कभी यदि मन में विचार हो कि भागवत और भगवान में से श्रेष्ठ कौन है, भगवान से कृष्ण श्रेष्ठ है या श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, भक्तों भगवान से कृष्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ उत्तम उत्कृष्ट श्रीमद् भागवतम है। अरे बोल, ये थोड़ा बढ़ाओ और ऑक्टोपेड भी बढ़ाओ। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान से भी अधिक भागवत श्रेष्ठ है और इसका साक्षी आज से 5000 वर्ष पहले इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम महाराज परीक्षित था। महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आप सब लोग शायद जानते होंगे। महाराज परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था, अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय प्राप्त करा के युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेघ यज्ञ करा के हस्तिनापुर के राजा बना दिए और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका अपने घर पर वापस जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण रथ के ऊपर सवार है और रथ को चलाने के लिए उद्धव जी और सात्यकी जी बैठे हैं, बस एक आदेश की देरी है। जैसे ही रथ चलने जा रहा था उसी समय भागवत के प्रथम स्कंद में कथा आती है। रथ चलने जा रहा था उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आई। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे कृष्ण, हे ईश्वर, पाही पाही आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्या हुआ? तब देवी उत्तरा कहती हैं कि प्रभु, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है। उन दिनों महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे और परीक्षित की मां कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी उत्तरा, आप मेरे पास क्यों आ रही हो? आपके दादाजी 5 पांडव खड़े हैं और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय प्राप्त होकर आए हैं, बिल्कुल ताजे ताजे अनुभवी योद्धा है। ये 5 योद्धाओं को छोड़कर आप मेरी शरण में आई? मैं तो एक ग्वाला, बंसरी बजाने वाला, मैं तुम्हारी क्या रक्षा कर सकता हूं? तब देवी उत्तरा ने कहा कि प्रभु, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये 5 पांडव मेरे दादाजी खड़े हैं, परंतु ये पांडवों को यदि मैं कहूं कि 1 मिनट में 1000 को मारना है, ये मार सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, ये समर्थ है 1 मिनट में 1000 को मारने में। परंतु प्रभु, मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आपका है। इस संसार में यत्र मृत्यु, एक दूसरे को परस्परम मार सकते हैं, परंतु मरे हुए को अभय प्रदान करना, मरे हुए को जिला देना, ये तो एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं, प्रभु आप ही कर सकते हैं। बात भी सही है, भगवान आखिर भगवान है। भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकृति के नियम में बंधे नहीं है। आज तो इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति मर जाए, दुनिया के सभी डॉक्टर मिलकर भी उस एक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते हैं। परंतु इतिहास साक्षी है, एक नहीं सैकड़ों मरे हुए जीवों को भगवान श्री कृष्ण ने जिला दिया, जीवित कर दिया। कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। वैसे तो कृष्ण को शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जिस भगवान के साथ से चारों वेद प्रकट होते हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ऐसे भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाए, ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं, परंतु जगत को शिक्षा देने के लिए एक बार गए थे उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में, और 64 दिन में 64 कला सीख लिए। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो एक एक कक्षा में 10-10 साल बीत जाते हैं, परंतु भगवान तुरंत सीख लिए। और पढ़ाई करने के बाद अपने गुरु को कहे, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, परंतु गुरु पत्नी ने कहा कि कृष्ण, मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, मेरा पुत्र बचपन में ही मर गया है, मेरे पुत्र को वापस ला कर दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका पुत्र कहां से लापता हुआ है? बोले, समंदर में स्नान करने के लिए गए थे। कृष्ण समंदर के किनारे गए, समुद्र देवता को ललकारा, समुद्र में जाकर शंखचूड़ नामक असुर का वध किया, परंतु वहां गुरुपुत्र नहीं मिला। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमराज के दरबार में नरक लोक में गए। यमराज जी को कहा, महाराज मेरे गुरु का पुत्र आपके यहां आया है? यमराज जी ने कहा, हां प्रभु, आपके गुरु का पुत्र मेरे पास है। बोले, मैं उसे लेने के लिए आया हूं, मुझे वापस लौटा दो। यमराज जी ने कहा, प्रभु मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनके कर्मों में लिखा है मृत्यु, उनके भाग्य में इतना ही जीवन था, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी है, वो मर चुका है, अब मैं उसे कैसे दे सकता हूं? प्रभु आपका ही बनाया हुआ नियम है, उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूं? भगवान ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा है, इसलिए मेरे पुत्र को वापस लौटाओ। भगवान से कृष्ण के कहने पर यमराज जी ने गुरु पुत्र को वापस लौटाया, और भगवान कृष्ण गुरु पुत्र को लेकर अपने गुरु और गुरु मां को प्रदान कर दिया। मरे हुए पुत्र को भगवान जिला दिए, वापस लाए। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटना भागवत में, अन्य शास्त्रों में पाई जाती है। देवी उत्तरा ने कहा, प्रभु अभय प्रदान करने वाले एकमात्र आप हो। तब मानो भगवान कृष्ण कहें कि देवी, तुम जियो या मरो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा पति तो मर चुका है, तुम विधवा हो, और विधवा जिए या मरे क्या फर्क? तब देवी उत्तरा कहती हैं, प्रभु मुझे जीने की इच्छा नहीं है। अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मां में मेरे गर्भ निपात्यता, मेरे गर्भ को एक खरोज भी ना आए, आप ऐसी कृपा कीजिए। देखिए, हमारे भारतवर्ष की एक आदर्श नारी खुद मरने के लिए तैयार है, परंतु अपने गर्भ की रक्षा करना चाहती है। परंतु आज तो घोर कलयुग चल रहा है, अपने गर्भ में रही हुई संतान को मार डालते हैं, गर्भपात कराते हैं, और माँ खुद जीवित रहती हैं। यह आदर्श नारियों से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। भगवान को प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तरा के पुत्र परीक्षित को गर्भ में रक्षा की। कृष्ण गदा और चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गए और एक रूप से बाहर खड़े रहे। ब्रह्मास्त्र आया और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को विलोम कर दिया, नष्ट कर दिया। ये थी महाराज परीक्षित के जीवन में प्रथम दुर्घटना। पहली दुर्घटना थी और महाराज परीक्षित भगवान के शरण में गए और भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा की। और ऐसी ही दुर्घटना महाराज परीक्षित के जीवन में दूसरी बार हुई। कब? यही महाराज परीक्षित एक दिन जंगल में मिर्गड़ा करने के लिए गए। धूप के कारण बहुत प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए। समीक ऋषि का आश्रम था, ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हुए थे और उस ऋषि मुनि की परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प उनके ऊपर डाल दिया। पता चला है तो वास्तव में ध्यान में बैठे हैं, परंतु यह दृश्य उस गांव के एक बालक ने देख लिया और वह बालक दौड़ता दौड़ता उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गया और जाकर बात बताई कि आपके पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है। तुरंत वह श्रृंगी ने बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वह व्यक्ति आज से 7 दिन के बाद मर जाएगा। तक्षक नाग आएगा और उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु होगी। श्राप। महाराज परीक्षित के जीवन में यह दूसरी दुर्घटना। और जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला कि मुझे मरना है, 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा मेरी मृत्यु है, तुरंत महाराज परीक्षित, अब की बार महाराज परीक्षित भगवान की शरण में नहीं गए, अब की बार महाराज परीक्षित भागवत की शरण में गए। प्रथम दुर्घटना जब हुई तब महाराज परीक्षित भगवान की शरण में, उनकी मां भगवान की शरण में गए, और दूसरी दुर्घटना हुई तब महाराज परीक्षित भागवत की शरण में गए। हरिद्वार में गंगा के तट पर आए, परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए और सुखदेव गोस्वामी के मुख से महाराज परीक्षित ने भागवत कथा सुनी और वह भागवत कथा सुनकर महाराज परीक्षित तक्षक नाग से बच गए। ये दोनों दुर्घटना जगत में विदित है, सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, परंतु इसका राज क्या है? राज की बात ये है भक्तों, दोनों दुर्घटना महाराज परीक्षित के जीवन में हुई और दोनों दुर्घटना में वे मरने वाले, परंतु एक दुर्घटना में महाराज परीक्षित भगवान की शरण में गए और दूसरी दुर्घटना में भागवत की शरण में। भक्तों, महाराज परीक्षित जब भगवान की शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को यह जगत प्राप्त हुआ, जिस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को यह भौतिक संसार मिला और भागवत की कृपा से महाराज परीक्षित को भगवान का धाम प्राप्त हो गया। यह घटना सार्थक करती है, भगवान से ज्यादा कृपालु श्रीमद् भागवतम है। भगवान ने दिया संसार और भागवत ने दिया भगवत धाम। भक्तों, ये वही भागवत है जिस भागवत का श्रवण करके हम लोग इस जीवन में भी सुखी हो सकते हैं और इस जीवन के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस पहाड़ों के बीच में भी ये भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। वैसे तो इस जगत में भागवत कथा और अन्य कथा बहुत होती है, परंतु भक्तों अन्य कथाओं में और यह कथा में अंतर क्या है? अन्य जो कथाएं होती हैं उनमें बहुत ज्ञान दिया जाता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। बहुत ज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान की गंगा बहती है, परंतु केवल कोरा ज्ञान प्राप्त कर लेना यह कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञात्वा नेह भूयन्तो। हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दूंगा। भक्तों ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में जानना, चाहे आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में या जगत के विषय में जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा जाता है। परंतु मात्र जानकारी प्राप्त करने कर लेने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। जानकारी प्राप्त करके वह जानकारी अपने जीवन में उतारने से प्रगति होती है, लाभ होता है। नहीं तो नीति शास्त्र में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता नतु चंदनस्य। एक उदाहरण देकर कहते हैं, आपने गधों को देखा होगा, देखा है? गधे होते हैं वो बहुत भार ढोते हैं, बहुत वजन उठाते हैं, और कभी कभी उस गधों के ऊपर मलई पर्वत का चंदन रखा जाता है, बहुत महंगा चंदन, बहुत कीमती चंदन। कभी कभी उस गधों के ऊपर बहुत कीमती कपड़े वस्त्र रखे जाते हैं, परंतु वह गधा भारस्य वेता न तु चंदनस्य। वह गधा केवल उसका वजन जानता है, उसकी महिमा नहीं जानता है। चंदन की क्या महिमा है या वस्त्रों की क्या महिमा है? यदि लाखों रुपए के वस्त्र उनके ऊपर रखा जाए या लाखों रुपए का टीवी उनके ऊपर रखा जाए, तो गधा केवल वजन जानता है कि 5 किलो 15 किलो है, टीवी की महिमा उसे नहीं पता है। भारस्य वेता न तो टीवी यस्य, भार जानता है परंतु। उसी प्रकार तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। उसी प्रकार इस संसार में कुछ ब्राह्मण या कुछ लोग शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके पास ज्ञान बहुत है, परंतु वो ज्ञान अपने जीवन में उतरा नहीं है, वो ज्ञान का पालन नहीं करते हैं, तो वो गधे के समान है। जैसे गधा वो भार ढो रहा है, वैसे ये लोग मात्र वेद और शास्त्र का भार ढो रहे हैं, है? केवल वजन उठा रहे हैं, केवल बोझ है। भक्तों ज्ञान के साथ साथ विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान बड़ी चीज नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान जीवन में आचरित। और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान कब प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके साथ साथ विज्ञान भी होगा। तो ज्ञान के साथ विज्ञान मात्र कृष्ण ही दे सकते हैं, और कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की शुद्ध परंपरा में, कृष्ण के बनाए हुए संप्रदाय में, कृष्ण की बनाई हुई शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, वे लोग ज्ञान भी दे सकते हैं और विज्ञान भी दे सकते हैं। मैं ये कह रहा था, जगत में बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन वह सब कथा और यह कथा में क्या अंतर है? वह कथा में मात्र ज्ञान होता है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस कथा में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दिया जा रहा है, ऐसा विज्ञान जिसे आप अपने जीवन में उतार सको, पालन कर सको। तुम सबका परम सौभाग्य है कि यह शुद्ध भागवत कथा यहां पर हम सब श्रवण कर रहे हैं और यह कथा शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग यह दावा कर सकते हैं, क्या लाल गोविंद प्रभु आप शुद्ध हो, आप अपने आप को शुद्ध मानते हो? यदि मैं सत्य बात कहूं तो मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा अपवित्र इस संसार में कोई नहीं, ये सनातन सत्य बात है। परंतु उससे भी बड़ा सत्य ये है कि मैं यहां पर जो बोल रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये शुद्ध भक्त, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष और आचार्यों के शब्द हैं। मैं जो यहां पर बोल रहा हूं ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, ये श्रीधर स्वामी के शब्द हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, ये वीर राघव विजय ध्वज गोस्वामी गिरधरलाल, हमारे इतिहास में भगवान के बड़े बड़े शुद्ध भक्त हो गए जो भागवत को आत्मसात किए हैं, भागवत को अपने जीवन में उतारे हैं और वे भागवत को जिस प्रकार से समझे हैं, उन्होंने भागवत के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या लिखी है, उन्हीं की बात को मैं यहां पर एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। हो सकता है मुझ में बहुत सारे दोष हैं, परंतु मैं जो बोल रहा हूं ये शुद्ध भागवत है। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे हमारा काम एक पोस्टमैन जैसा है, पोस्टमैन जानते हैं ना, पत्र लेकर आता है, क्या कहते हैं हिंदी में, डाकिया, डाकिया कहते हैं ना, डाकिया आता है डाक घर से, डाकिया क्या करता है, एक घर से पत्र लेकर दूसरे घर में पहुंचाता है। तो डाकिया एक घर से पत्र उठाया दूसरे घर में पहुंचाया, हो सकता है डाकिया बीमार है, हो सकता है डाकिया बेकार है, हो सकता है डाकिया का एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डाकिया जो है वो उस पत्र में अपना कुछ नहीं डाल रहा है, वो तो एक घर से उठाकर दूसरे घर में छोड़ रहा है। तो उसी प्रकार हमारा काम जो है उस डाकिये जैसा है, डाकू जैसा नहीं, डाकिये जैसा है, हमारा काम उस डाकिये जैसा है। बड़े बड़े आचार्य शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद शिपा श्रीधर स्वामी, इनके शुद्ध मैसेज को, शुद्ध भागवत की व्याख्या को वहां से शास्त्र से उठाकर आपके सामने प्रकट करते हैं। फिर डाकिया भले अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, उससे क्या मतलब है, परंतु ये तो सनातन सत्य बात है भक्तों कि आपको जो सुनने मिल रहा है बहुत शुद्ध शब्द है, ये जो ध्वनि है और इसका वाइब्रेशन जो है परम पवित्र है, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों के शब्द है। और वास्तव में एक कथा व्यास को, एक कथा वक्ता को यही करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सब लोग कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से मोहित हैं। अपनी बुद्धि से कुछ भी बोलने जाओगे तो उसमें माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव रहेगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इसलिए अच्छा वक्ता उसे कहा जाता है जो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को जगत के सामने प्रस्तुत करे, इसे अच्छा वक्ता। आप सब जानते हैं वक्ता को संस्कृत में स्पीकर कहते हैं, जो वक्ता होता है कथाकार उसे संस्कृत में स्पीकर कहते हैं। और दूसरा स्पीकर जो आपके बाजू में पड़े हैं वो भी आपको पता है। अब जो आपके पास जो स्पीकर है वो अच्छा कब माना जाता है, यहां कोई व्यक्ति बोल रहा है, इस व्यक्ति की बात को हूबहू एज इट इज उस स्पीकर से निकले तो माना जाएगा कि ये स्पीकर अच्छा है। और यहां पर कोई कुछ बोल रहा है और इससे अलावा कोई भिन्न बात यदि स्पीकर निकाले तो वो अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना स्पीकर से आवाज आता है चूचा, क्या वो चीज अच्छी लगती है? नहीं। यहां की बात को एज इट इज हूबहू जो प्रस्तुत करता है वही अच्छा स्पीकर माना जाता है। वैसे ही सबसे अच्छा वक्ता और व्यास उसे कहा जाता है जो वेद व्यास की बात को, बड़े बड़े आचार्य की बातों को हूबहू एज इट इज यथारूप में जगत के सामने प्रस्तुत करे। और यही सरल और सुगम रास्ता है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सही मम सुगम चलत मम भाई। हे मेरे भाई, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, प्रथम पहले बड़े बड़े मुनियों ने जो कीर्ति भगवान की गा रखी है उस कीर्ति को गाना ही सबसे सुगम और सरल मार्ग है। क्यों? क्योंकि भगवान को यदि हम हमारी बुद्धि से समझने जाएंगे तो उसमें अनेक अटकलबाजी करने लगेंगे, भगवान ऐसे हैं, निराकार है या ये है या वो है। इसलिए हमें हमारी बुद्धि न चलाकर महाजनोयेन गतहस पंथा, तर्को प्रतिष्ठो स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मत न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। महाजनोयेन गतहस पंथा, भक्तो धर्म का ये जो पथ है, धर्म का तत्व बहुत गुह्य है। इसलिए महाजन, बड़े बड़े लोगों ने, सुखदेव व्यास, सूत गोस्वामी इत्यादियों ने जो पहले से ही भगवान की कीर्ति गा रखी है उन्हीं को गाना ही सरल और सुगम मार्ग है। और यही हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो कथा है जगत की अन्य कथाओं से बिल्कुल भिन्न है, शुद्ध कथा है। इसे सुनना ही एक भक्ति है। ऐसा नहीं है इसे सुनने के बाद घर पे जाकर कुछ करना है, करेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि घर पे जाके कुछ नहीं भी किया, आप केवल यहां सुनते हो, दो तीन घंटा सुने, तीन घंटा आपकी भक्ति हो गई, भगवान के लेखे जोखे में तीन घंटा आ गया कि फलाने भाई ने तीन घंटा भक्ति की। और ऊपर से इस कथा में अनेक उपदेश दिए जाते हैं, यहां मात्र वो कथा नहीं होती है, एक राजा था, एक रानी थी, ये किया वो किया, केवल कोरी कथा नहीं है। कथा के साथ साथ अनेक सिद्धांत हैं, अनेक उपदेश हैं, अनेक ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कथा अपने आप में पवित्र है, और कथा के साथ साथ कथा में दिए जाने वाले सिद्धांत को जब हम जीवन में उतारेंगे तब तो जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा, तब तो हमारा जीवन यह जीवन वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यह शुद्ध भगवत कथा आज हमें प्राप्त हुई है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि यदि यह शुद्ध कथा है तो इतने कम लोग क्यों हैं? और किसी की कथा होती है तो उसमें लाखों लोग, हजारों लोग बैठे होते हैं। भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, आपने देखा होगा जहां असली सोने की जो दुकान है ना, वहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। जहां सही असली सोना मिलता है वहां कम लोग होते हैं, और जहां नकली सोना मिलता है, इमिटेशन ज्वेलरी, वहां लाइन लग जाती है। तो कलयुग का यह प्रभाव है, कलयुग में जो शुद्ध धर्म होगा, जहां शुद्ध कथा होगी वहां कम लोग जुटेंगे, ये कलयुग का प्रभाव। यदि मैं सतयुग में कथा करता तो करोड़ों लोग बैठे होते, क्योंकि युग सपोर्ट करता है। और कलयुग में तो, क्योंकि यहां खरा सोना है, असली सोना है, और ये सोना सब लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। आप लोगों के मन में भी ऐसा होता होगा कि वो यहां पर क्यों नहीं आती है, वो यहां पर कथा सुनने क्यों नहीं आते, वो कभी नहीं आ पाएंगे। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी बोलिए, क्यों? क्योंकि उनके पास वह सुकृति नहीं है, वह योग्यता नहीं है, वह धन नहीं है जिससे ये कथा सुन सके। शास्त्र में एक प्रश्न उठाया गया, भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना होगा? यह शुद्ध कथा प्राप्त करने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना होगा? तब कहते हैं तत्र लोल्यम अपि मूल्यम च, इसके लिए लोलुपता होनी चाहिए, सुकृति होनी चाहिए। जिसके पास 5,000 रुपये जेब में है, 5,000 रुपये जिसके जेब में है, वे अच्छी एयर कंडीशन होटल में अच्छी प्लेट में भोजन कर सकता है, और जिसके पास 5 रुपया है वो तो रास्ते में खड़े खड़े कहीं से कुछ भी खा, बाहर की चीज खाएगा। उसी प्रकार जिसके पास सुकृति रूपी धन है, कोटि जन्म समार्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषः यदावे, करोड़ों करोड़ों जन्म से जब कोई व्यक्ति पुण्य और सुकृति करता है तब जाकर वो व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को यह शुद्ध कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, सबको नहीं। और जिनके पास सुकृति और पुण्य नहीं है वे इस कथा में आ भी गए तो बैठ नहीं पाएंगे, आधे घंटे में खड़े होकर चले जाएंगे, सुकृति नहीं है, सुकृति चाहिए। भक्तों, आपको हृदय से एक बात कहता हूं, इस मंडप में जितने लोग बैठे हैं भगवान की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है, आपने और आपके पूर्वजों ने बहुत सुकृति किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिनके फल स्वरूप आपको आज इस शुद्ध भगवत कथा में बैठने का अवसर मिला है, सबको नहीं मिलता है। नहीं तो विचार करो कहां हम बंबई में हैं, कहां हम रहने वाले और कहां ये पहाड़ी विस्तार, जीवन में पहली बार ये गांव देखा और इसका नाम सुना। इतना बड़ा योग, ये भगवान की कुछ इच्छा, ये भगवान का कोई योग है, भगवान कहां से किस जीव को कहां मिला दे। और यहां से हम चले जाएंगे, जीवन में दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई भरोसा नहीं, कौन कहां चला जाए। ये भगवान का एक योग बना है, उनकी शुद्ध कथा सुनने का एक चांस, एक अवसर मिला है जीवन को परिवर्तन करने का। भक्तों, ये मौका हाथ से चला ना जाए, क्योंकि मौके जो हैं एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि भगवान बहुत सुंदर मौका देते हैं, और यदि इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो अवसर बीत जाएगा, और अवसर बीत जाने के बाद मन पछताएगा, एक दिन आएगा सब लोग पछताएंगे, परंतु मन पछताई है अवसर बीते, अवसर बीत जाने के बाद मन कितना भी पछताए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो सु अवसर प्राप्त हुआ है बिलेश्वर महादेव और हमारे इस्कॉन के भक्तों की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से, इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। सब लोग तैयार हैं? नहीं, बंद कर दूं? हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
बहुत सुंदर भागवत का प्रसंग यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं, हम भी हमारे जीवन में प्रथम बार यह कथा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रसंग, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, संपूर्ण भागवत और अनेक अनेक प्रसंगों की कथा हम कर चुके हैं, परंतु यह प्रसंग को हमने जीवन में पहली बार स्पर्श किया है, और हमें भी इसका अध्ययन करने में, इसको पढ़ने में बहुत आनंद मिल रहा है। रात के 11 बजे तक हम इसे पढ़ते रहते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और जो भी पढ़कर बुद्धि में फिट होता है और जितना याद रहता है उतना आपको बताने का प्रयास करते हैं। कभी कुछ गलती हो जाए, कुछ कमी रह जाए तो आप लोग अपना बच्चा समझकर, अपना दास समझकर क्षमा करते रहिएगा। परंतु एक तो बात सही है कि हमारी कथा में भले गलती हो या कुछ भी कमी हो, परंतु यह कथा भक्ति और प्रेम से लबालब भरी है। इसमें समर्पण है, त्याग है, वैराग्य है, भक्ति है और भगवान के प्रति प्रेम है। और भक्तों, प्रेम में कार्य नहीं देखे जाते हैं, भाव देखा जाता है। हमारा जो भाव है ना, ये कम से कम आप लोगों के प्रति बहुत अच्छा है। तो आइए शुद्ध भाव और भगवत कृपा से प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। गत सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार स्वयंभू मन्वंतर में प्रथम कल्प में बहुत सुंदर प्रजापतियों के द्वारा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर आकर बैठे थे। यहां तक ब्रह्मा जी और शिव जी भी उस यज्ञ में आए थे। दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में प्रवेश किए, सब लोग खड़े हो गए दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता थे, इसलिए खड़े नहीं हुए। और शिव जी कुछ कारणवश, वो कारण तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन पता नहीं चला, शिव जी कुछ कारणवश खड़े नहीं हो पाए। कोई बड़ी गलती नहीं थी, परंतु धन और पद के अभिमान में, धन और पद के मोह में दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बहुत बुरे वाक्य सुनाए। भक्तों, ये पद जो है कभी ना कभी अभिमान चढ़ा देता है। ये पद एक ऐसी वस्तु है, धन और पद, दुनिया में सबका मद ठीक, परंतु धन और पद का मद जो है अभिमान है, बहुत गलत है। मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु जैसे ही उस मनुष्य को पद के ऊपर बिठा दिया जाता है, बिगड़ जाता है। हमने देखा, ये नेता लोग आते हैं, मुझे वोट दीजिए, मेरा चुनाव कीजिए, तेल के भाव कम करवा दूंगा, सबके घर घर में राशन पहुंच जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत अच्छे होते हैं, घर घर जाते हैं, परंतु जैसे ही पद, पोस्ट और पोजीशन मिल जाती है, बिगड़ जाते हैं। ये केवल दक्ष प्रजापति की कथा नहीं, इतिहास में अनेक लोग, राजा नहुष के बारे में आपने सुना होगा, नहुष या नृग, नहुष। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में वृत्रासुर की कथा है। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, क्योंकि वृत्रासुर भगवान का भक्त था, वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और ब्रह्म हत्या मूर्तिमान स्वरूप लेकर इंद्र के पीछे दौड़ी, बहुत बहुत समय तक इंद्र का पीछा किया। इंद्र स्वर्ग को छोड़कर दौड़ने लगा, ब्रह्म हत्या उनका पीछा कर रही है। उस समय हमारे इन्हीं इस स्थान पर मान सरोवर के जल में एक कमल की नाल में जाकर इंद्र छिप गया। और ब्रह्म हत्या उसे ढूंढ नहीं पाई, और कहा जाता है लगभग 1000 वर्ष तक इंद्र उस कमल की नाल में रहा। तब प्रश्न उठाया गया, तो उस 1000 वर्ष तक स्वर्ग के ऊपर कौन राज किया, क्योंकि इंद्र तो थे नहीं। पुराणों में कथा है कि उस 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया। नहुष बहुत अच्छे थे, परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसे स्वर्ग का राजा बनाया, उस राजा नहुष को अभिमान आ गया, पद का अभिमान, और उस अभिमान के बल स्वरूप राजा नहुष ने स्वर्ग को अपने वश में कर लिया। यहां तक इंद्र की पत्नी शची को बुलाया, कहा कि ये स्वर्ग मेरा है, तो तुम भी मेरी हो, मेरे साथ संग करो, मेरे साथ विवाह करो। इंद्र की पत्नी पतिव्रता नारी है, कभी स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में सोच नहीं सकती है, परंतु नहुष जो थे पद के अभिमान में, इंद्र की पत्नी डर गई, कहा कि मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगी। और तुरंत इंद्र पत्नी शची अपने गुरु बृहस्पति के पास गई, कहा गुरुदेव मैं धर्म संकट में फंसी हूं, यदि मैं ना कह देती हूं तो वो मुझे मार डालेगा, और हां कह देती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा, क्या करूं। तब गुरु जी ने बहुत सुंदर सलाह दी। गुरु जी से सलाह लेकर शची राजा नहुष के पास आई, और जैसे ही गुरु जी ने समझाया था वैसा ही कहा कि हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले ये सप्तर्षि, सप्तर्षि आप जानते हैं, सात ऋषि आज भी अमर हैं, ये सातों ऋषि जब आपको पालकी में बिठाकर, अपने कंधे पर पालकी को चढ़ाकर आपको मेरे पास लाएंगे, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। और ये पद के मोह में, पद के और धन के मद में, अभिमान में आकर सप्तर्षि के पास गया, कोई बात नहीं। और सप्तर्षि जो महान है, पूजनीय है, ऐसे सप्तर्षियों से पालकी उठवाया, बोले उठाओ पालकी, और खुद राजा नहुष उस पालकी में बैठा। और ये काम वासना से इतना पीड़ित हो रहा था, कामात्तु राणाम न भय न लज्जा, जब किसी के दिमाग पर काम का आवेग आ जाता है तब उसे किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, काम अंधा होता है धन और पद के मोह में। वह राजा नहुष उस पालकी में बैठकर बार बार कह रहा था, हे सप्तर्षियों जल्दी चलो। अरे ये तो बेचारे बूढ़े थे, लंबी लंबी जटा दाढ़ी वाले, धीरे धीरे चल रहे थे, बूढ़े लोग तो कैसे चलेंगे। और एक काम का वेग सता रहा था, रह नहीं पाया, और पालकी में बैठकर अगस्त ऋषि के मस्तक में राजा नहुष ने जोर से धक्का मारा, लात मारी, अरे मैं कब का कह रहा हूं जल्दी चलो पता नहीं चल रहा है। और अगस्त जी की जगता में दुर्वासा ऋषि का वास है, तुरंत ऋषि मुनि को क्रोध आया, खड़े रह गए, अरे दुष्ट तू धन और पद के मोह में, ऐश्वर्य के मोह कामांत होकर हम ऋषि मुनियों को लात मार रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं तो ये गिरगिट बन जा, श्राप दे दिया। इस प्रकार भक्तों मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु जब उसके पास धन आ जाता है, कोई पद पोस्ट पोजीशन आ जाती है, तो वो बिगड़ जाता है। दक्ष प्रजापति अच्छे थे, परंतु ये मैनेजमेंट जो है व्यक्ति के दिमाग को बिगाड़ ही देता है, बिगाड़ देता है। बार हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, राजा रघुगण कितने अच्छे थे, कितने, इतना वैराग्य हुआ, अपने घर से निकल गए और गंगा सागर, सौराष्ट्र शौबिर देश के राजा थे, और सौराष्ट्र से गंगा सागर जा रहे थे ज्ञान प्राप्त कर, इतना वैराग्य, परंतु राजा थे ना, पद उनके पास था, मैनेजमेंट उनके पास था, और मैनेजमेंट का प्रभाव आ ही जाता है, बेचारे जड़ भरत को दांत ही दिया। ये है पद, पद कोई